ओम शांति। बाहर बारिश की रिमझिम है और यहां ज्ञान की रिमझिम होने वाली है। मैं आज के इस मंच के महानुभावों को निमंत्रण देता हूं, हमारे कीनोट स्पीकर राजयोगिनी बी के उषाबेन जी को मैं मंच पर आने का निमंत्रण देता हूं, चीफ गेस्ट के रूप में हमारे बीच में उपस्थित श्री नीलेश एम देसाई डायरेक्टर एसएससी इसरो अहमदाबाद को भी मंच पर आने के लिए निमंत्रण देता हूं, श्री अर्थ बंधु साहू जो चेयरपर्सन के रूप में अपना काम करेंगे, डायरेक्टर आईसीएआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी, उनको भी मंच पर आने का निमंत्रण देता हूं। और हर सत्र में जो होता रहा है हमारे अंतर जगत की यात्रा कराने के लिए, मैं राजयोगिनी बी के हेमलता बहन को भी मंच पर उपस्थित रहने के लिए निमंत्रण देता हूं। आप सब आए और तालियों से उनका स्वागत करें। हम एक ऐसे सत्र में उपस्थित हैं जहां विज्ञान और अध्यात्म दोनों के प्रमुख पहलुओं पर प्रकाश डाला जाएगा। कवि दिनकर जी ने एक बहुत अच्छा काव्य लिखा था, बचपन में पढ़ा था, उसकी चार लाइन से मैं इसका आगाज करता हूं और फिर हम प्रभु स्मृति से प्रारंभ करेंगे। लेकिन इन सब से पहले मैं हमारी बहनों को निमंत्रण देता हूं कि वे मंचस्थ महानुभावों को बैज से स्वागत करें। पुष्प गुच्छ और बैज हमारे मेहमानों के लिए। नीलेश देसाई साहब का अभिवादन हो रहा है, स्वागत हो रहा है। आदरणीय राजयोगिनी उषा दीदी का और हमारे अर्थ बंधु साहू जी का भी स्वागत हो रहा है, उनको बैज पहनाया जा रहा है। हेमलता बेन जो हमें अंतर जगत की यात्रा कराने वाली हैं, उनका भी बैज और पुष्प गुच्छ स्वागत किया जा रहा है। हम हमारे सभी सत्रों को परमात्मा स्मृति की स्मृति में समय बिताकर सैंडविच करते हैं, तो आने वाले सत्र इस विषय को ध्यान में रखकर और जो गीत बजता है उसके शब्दों में अपने आप को खोकर कुछ पल परमात्मा स्मृति के लिए। ओम शांति। हमारे बीच में इस विषय पर अपने विचारों को पेश करने के लिए आदरणीय उषा दीदी उपस्थित हैं। मैंने जिस कविता की बात की थी उसको थोड़ा सा ध्यान में रखें और आगे की बातों को समझने का प्रयत्न करें। कविता थी, रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता और फिर बेचैन हो जगता न सोता है। एथिकल और एआई, इन दोनों का कनेक्शन, अपनी उलझने बनाता है और फिर मुश्किल, अपनी मुश्किलें हम ही पैदा करते हैं, हमारे ही साधनों का हम दुरुपयोग करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम भीतर से कहीं कुछ गड़बड़ करते हैं तो बाह्य जगत में भी वही गड़बड़ फैल जाती है। इस संदर्भ में आर्ट, इसके बारे में कहा गया है कि इट इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। मैं कुछ देखता हूं, उसकी छवि मेरे मन में बनती है और उस छवि को मैं फिर से पेश करने के लिए उसके अलग अलग पहलुओं से, मेरा पहलू अलग हो सकता है, दूसरे का पहलू अलग हो सकता है, इस प्रकार हम आर्ट को ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी बोलते हैं। लेकिन वो आदमी का स्वभाव है तो वो किए बिना रह नहीं पाता। आर्टिफिशियल जब बोलते हैं तो वो मैन मेड है। अब मैन के बारे में ऐसा कहते हैं सामान्य तौर पर कि परफेक्ट तो एक परमात्मा है, मनुष्य तो इम्परफेक्शन से भरा हुआ है, उसकी यात्रा परफेक्शन की ओर होती है। तो उस परफेक्शन की यात्रा का अंजाम क्या होता है कि ही टेंड्स टू बी गोइंग टूवर्ड्स परफेक्शन। किसी आदमी को यूं कहा जाए कि आप सामने की दीवार तक पहुंचो लेकिन एक जंप में आधा डिस्टेंस ही काट सकोगे, तो दीवार की ओर पहुंचेगा जरूर लेकिन दीवार तक नहीं पहुंचेगा। हम अपने अंदर की इम्परफेक्शंस को दूर करने का बहुत प्रयत्न करें तो भी सामने की दीवार जो है उस स्टेज तक पहुंचने में कहीं ना कुछ बाकी रह ही जाता है। और आदमी जितनी गलतियां करता जाता है उतना वो सीखता जाता है, और गलतियों से सीखते सीखते वो लाइक बनता है, गॉड लाइक बन सकता है, डिवाइन, तो डिवाइन लाइक भी हो सकता है। तो इस यात्रा में हम जो साधन हमारे बनाए हुए हैं वो हमारे कितने काम के हैं वो हमारी ही चीज पर, हमारे ही विचारों पर निर्भर रहता है। तो इन भूमिका के साथ और आदरणीय हमारी बहन जी का अल्प सा परिचय मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगा। आदरणीय उषा दीदी, डेडिकेटेड टू स्पिरिचुअल सर्विस सिंस 1980। आप सोचिए लगभग 45 साल हो गए, 20 साल वो और 25 साल ये। और भारत यूनिटी यूथ मार्च में आपने भाग लिया था 85 में। सेल्फ मैनेजिंग लीडरशिप आपका एक सिग्नेचर कंट्रीब्यूशन टू यज्ञ था, उसमें आपने लीडिंग कॉरपोरेट्स इन इंडिया एंड एब्रॉड उनका ट्रेनिंग दी। रिनाउंड रिसर्चर एंड प्रेजेंटर ऑन रामायण एंड श्रीमद् भगवद गीता, रामायण को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने का और गीता के भी अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखने का, आध्यात्मिक दृष्टि से देखने का एक नया उपक्रम उन्होंने शुरू किया और सालों साल तक इसके ऊपर अपने देश विदेश में भाषण दिए। और एक किताब जो छपी हुई है सेल्फ मैनेजिंग लीडरशिप, जो हर तबके के लिए उपयोगी है और इंटरनेशनल नेशनल टीवी में। तो अंत में एक छोटी सी लाइन जो वहां लिखी हुई आप देख रहे होंगे, थ्रू हर क्लैरिटी एंड इलोक्वेंस शी ब्रिजिस स्पिरिचुअलिटी एंड मैनेजमेंट, इंस्पायरिंग थाउजेंड्स टू लीड एम्पावर्ड लाइव्स। इन एम्पावर्ड लाइव्स के लिए आप बहुत ही वर्षों से हमने इनके साथ जो काम किया है, आपने राजयोग के ऊपर भी एक सुंदर पुस्तक लिखी हुई है राजयोग की ओर करके, इन सब के लिए मैं अब उनको मैं निमंत्रण देता हूं अपने की नोट वक्तव्य के लिए।
ओम शांति। सर्वशक्तिमान जगत नियंता परमपिता परमात्मा के सभी प्रिय संतान, मंच पर आसीन हमारे आदरणीय विनय भाई जी तथा आदरणीय श्री नीलेश देसाई जी डायरेक्टर इसरो अहमदाबाद, श्री आर्था बंधु साहू director of National Institute of Nutrition and Physiology, तथा हमारी प्यारी बहन हेमलता बहन, सभा में उपस्थित सभी प्यारे भाइयों बहनों, वर्तमान समय के अंदर चारों ओर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा होती ही है और मनुष्य उसके वंडर्स को देखते हुए सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या आने वाले समय में ये कितना सही रहेगा या कितना कृत्रिम हो जाएगा। जब मैं इस विषय पर सोच रही थी तो विचार चला कि परमपिता परमात्मा जब अधर्म का नाश और सत धर्म की स्थापना के लिए इस संसार में अवतरित होते हैं 35-36 के आसपास, और उसी समय शायद परमात्मा अपने संग संग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इस संसार में ले आए, क्योंकि उसके पहले मनुष्य सब कुछ अपने बौद्धिक शक्ति और क्षमता पर कार्य करता था। सबसे पहले एआई का जो स्वरूप आया हम सबके सामने वो था एक कैलकुलेटर, और वहां से एआई की जर्नी आरंभ होती है इस संसार के अंदर। कैलकुलेटर जैसे आया, पहले लोग अपनी बौद्धिक शक्ति से कैलकुलेट कर देते थे कितने भी बड़े फिगर्स हो सहजता से। आज भी कई ऐसे बच्चे हैं जिनका माइंड कैलकुलेटिव माइंड है और बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन जब कैलकुलेटर हाथ में आया तो बड़ा आश्चर्य लोगों को लगा कि अरे हम सोचे उसके पहले ही ये कैलकुलेट करके हमें दे देता है, और लोगों को अच्छा लगने लगा, वो उस कैलकुलेटर को जीवन में शामिल करते गए। धीरे धीरे एक एक चीज आती गई, कंप्यूटर्स आए तो और आश्चर्य हुआ कि देखो एक मशीन किस तरह से कार्य कर रहा है, सब कार्य कितना सुलभ हो रहा है, सरलता से हो रहा है, सहज हो रहा है। और धीरे धीरे आगे उस कंप्यूटर के अंदर जैसे जैसे नए नए सॉफ्टवेयर आते गए, उस तरह से इसकी यात्रा और आती गई। कई चीजों को डेवलप करने में, विकसित करने में ये कंप्यूटर्स ने या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अपना रोल प्ले किया, और ये 100 साल के अंदर कितनी सारी डेवलपमेंट्स, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, ये हम सभी साक्षी है। ये जनरेशन इसलिए लकी माना जाता है कि साक्षी है कि किस तरह से कहां विश्व पहुंचा है। और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक छोटा सा स्वरूप धीरे 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 किस तरह से विकसित होता रहा, और आज जो उसका स्वरूप देख रहे हैं वो भी हम सभी वाकिफ है। सोचते सोचते मन में ये विचार आया कि परमात्मा 3 कार्य करते हैं, कराते हैं, करण करावनहार है, तो 3 कार्य 3 देवों के माध्यम से कराते हैं। ब्रह्मा द्वारा सृजन का कार्य, विष्णु द्वारा पालना का कार्य, और शंकर द्वारा महाविनाश का कार्य भी। ठीक इसी तरह ये एआई जो है इस दुनिया के अंदर अनेक प्रकार से नए विकास को लाने के लिए निमित्त बना, और उसका स्वरूप हमने देखा कि कितना फास्ट, आज पल भर के अंदर कोई ना कोई चीज बन जाती है। जैसे जैसे व्यक्ति उसको कमांड्स देते गए, उस अनुसार वो अपना सृजन का कार्य करता है। लेकिन ये भी जरूर है कि महाविनाश के लिए भी कहीं ना कहीं एआई निमित्त बनेगा। और मैं समझती हूं कि हमारे भाई जो विशेष इसरो से और नेशनल इंस्टीट्यूट से जो आए हैं, वो भी उस बात से सहमत होंगे ही कि एआई कहीं ना कहीं एक ऐसा मोड़ भी लेगा कि जहां महाविनाश के लिए भी वो निमित्त बनेगा आने वाले समय में। इतना ही नहीं, लेकिन सोचते सोचते और मन के अंदर विचार आया कि ये एआई से जो कुछ भी आज सृजन हो रहा है, लेकिन उसका एक्सट्रीम पॉइंट जो है वो शायद जो गोल्डन ईरा आएगा, नई दुनिया जो आएगी, एक महापरिवर्तन के समय के बाद, जिसको हम कहते हैं गोल्डन एज या सतयुगी दुनिया, वहां भी एआई ही अपने रिफाइंड फॉर्म में होगा कि मनुष्य संकल्प किसे कमांड देगा। अभी तक तो हमें कमांड देना पड़ता है, लेकिन वो समय भी आएगा जब मनुष्य संकल्प से कमांड देगा और देवताओं के जो पुष्पक विमान है वो भी उड़ने लगेगा, वो जहां चाहेगा वहां उसको ले जाएगा। ये भी एआई का संपूर्ण रिफाइंड स्वरूप, जो देवताओं की पालना करेगा। तो एक और सृजन भी किया, इसमें त्रुटियां हैं, ये सृजन में कई जगह त्रुटियां हैं, क्योंकि ये दुनिया परफेक्शन की नहीं है, इसलिए अवश्य उसमें त्रुटियां रहेगी। जैसे कहा कि वो महाविनाश के लिए भी निमित्त बनेगा, तो किस तरह से अभी भी देखा कि कई जो गाइडेड मिसाइल्स है या गाइडेड जो सारे शस्त्र है वो किस तरह से कार्य करेगा, जिसका डर मनुष्य को है कि आगे चल करके क्या नहीं हो सकता है उसमें। लेकिन जब वो रिफाइंड स्वरूप में आ जाएगा, तब वो देवताओं के संकल्पों के कमांड को फॉलो करेगा और उसी के आधार से वहां जो इनोवेशन होगा, वहां जिस तरह से दुनिया के अंदर जो कार्य होगा वो एआई से ही हो जाएगा, और इसी से एक नए युग का आरंभ होगा, नए विश्व का आरंभ होगा, जहां देवताएं जितने अपने परफेक्शन स्वरूप में है, वैसे ही एआई भी अपने परफेक्शन स्वरूप में आ जाएगा। और इसीलिए कहा कि अब तक तो हमें कमांड्स देना पड़ता है, लेकिन वो समय आएगा संकल्पों को कैच करके ही वो अपना कार्य आरंभ करेगा। तो इसीलिए ये तीनों कार्य में मददगार अगर बनेगा तो एआई ही मददगार बनेगा। परमात्मा के ये दिव्य कार्य जो चल रहा है, सृजन का, महापरिवर्तन का और पालना का, तो इसीलिए मन में विचार है कि जब से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई तो एआई भी संसार के अंदर आया और उसने भी अपना कार्य एक छोटे से लेवल से आरंभ किया, और मनुष्य वंडर खाता रहा, एक एक चीज जैसे जैसे आती गई वंडर खाता रहा। लेकिन आज जो स्वरूप है, और उसमें भी जो विषय आज है, एथिक्स इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्तमान समय में तो हाँ ये जरूर है कि जब विनाश या महापरिवर्तन के कार्य में उसको कार्य करना है तो वहां तो थोड़ी एथिक्स उसकी गड़बड़ा जाएगी ही, एथिक्स रहेगी नहीं, बायस्ड हो जाएगा वो, ट्रांसपेरेंसी उसकी बनेगी नहीं, जिस तरह से उसको कमांड देंगे उस अनुसार शायद कुछ कार्य करे कुछ न भी करे। लेकिन जब सतयुगी दुनिया इस संसार में आ जाएगी, तो सतयुगी दुनिया में जैसे देवताएं परफेक्शन के स्वरूप में है, तो वहां एआई के एथिक्स भी संपूर्ण होंगे। वो कहीं पर भी न मिस कैलकुलेटिव होगा या न मिस अंडरस्टैंड करेगा किसी के संकल्पों को, और इसीलिए वहां जब एआई कार्य करता है तो संपूर्ण एथिक्स के साथ जिस तरह से उसको संकल्प दिया जाएगा वैसा ही वो कार्य करेगा। वहां फुल एथिक्स के साथ जब देवताएं एक डिवाइन मैनर्स के साथ है तो वहां एआई भी अपने संपूर्ण मर्यादाओं में रह करके ही कार्य करेगा, कहीं पर भी मर्यादाओं को लांघेगा नहीं। अभी तो मर्यादाओं को लांघ देता है, और इसीलिए हम कहते हैं इसके लिए जिम्मेवार कौन? जिम्मेवार कोई नहीं होता है भाई, एआई है तो कोई व्यक्ति को जिम्मेवार नहीं समझ सकते हैं। लेकिन आने वाले समय के अंदर जब ये कार्य करेगा, नव निर्माण करेगा, तो वो नव निर्माण भी इतना फास्ट होगा। आज जैसे दुनिया के अंदर मिनट मोटर होती है, एक मोटर को डिजाइन कर दिया और एआई को जैसे ही कमांड दे दिया तो उसमें बिना कोई त्रुटि के वैसे ही आइडेंटिकल हर कार मैन्युफैक्चर होने लगेगी, चलने लगेगी, उसमें कहीं पर भी डिफेक्ट नहीं होंगी। लेकिन जब ह्यूमन एरर हो सकता है तो कहीं ना कहीं वो कमांड जो जिस तरीके से देता है उसमें भी एरर्स अवश्य आएंगे। कि आज भले उस लेवल तक हम पहुंच गए कि बिना ड्राइवर के गाड़ी चलेगी, लेकिन एक्सीडेंट होगा, कहीं ना कहीं किस भी रूप में अगर एक्सीडेंट हुआ तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा, ये हम सोचते हैं। लेकिन इसका ही जो रिफाइंड स्वरूप होगा कि वहां पर देवी देवताओं के इतने पुष्पक विमान होंगे, वो सब एआई से ही चलेंगे, लेकिन वो अपनी मर्यादा में रह करके चलेंगे, वहां एक्सीडेंट्स होंगे ही नहीं, इतना परफेक्शन का स्वरूप उसका हो जाएगा। तो इसीलिए आने वाले स्वर्णिम दुनिया के अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और फुल एथिक्स के साथ उसकी भूमिका होगी, जिसको डिजाइन करते 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 उस स्वरूप तक हम पहुंच जाएंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अभी कई प्रकार की त्रुटियां होगी, और इस युग के अंदर तभी कहा वो महाविनाश महापरिवर्तन के लिए भी निमित्त बनेगा। इस संसार के अंदर काफी कुछ बदलाव देख भी रहे हैं और आगे होने वाला भी है, और उस बदलाव के बाद धीरे धीरे किस तरह से उसका रिफॉर्मेशन होगा, तो उसके लिए जो साइंटिस्ट होंगे वो कैसे उसको कार्य में लगाएंगे, वो भी स्वरूप जो रहेंगे उसको साक्षी होकर के देखेंगे। बाकी तो इस महापरिवर्तन के अंदर हर कोई ये जरूर कहता है कि हाँ, महाविनाश के लिए भी कहीं ना कहीं एआई बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। वो तो जरूर निभाना ही है उसको, क्योंकि ये परमात्मा का संकल्प है, जिस संकल्प के साथ इस संसार के अंदर उसकी प्रवेशता हुई है। तो परमात्मा की प्रवेशता हुई तो एआई की भी प्रवेशता हुई, एक छोटे से कैलकुलेटर के रूप में, और वहां से यहां तक की यात्रा आज हम साक्षी होकर के देख सकते हैं। तो यही कहूंगी मैं अपने इस विचार उद्बोधन में, के जरूर है कि एआई को जैसे जैसे हम समझेंगे, समझते 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 एक समय आएगा जब हम उसके फाइनल रूपरेखा को भी अच्छी तरह समझते हुए देखेंगे कि कैसे नवी युग का निर्माण भी करने की क्षमता इस एआई में है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद।
ओम शांति। बहन जी ने क्षितिज के पार के भी दृश्य हमारे सामने लक्ष्य के रूप में रख दिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसको सामने रख के करें, और उस विधि में बीच में कहीं कुछ गलतियां होती भी हैं तो उसको रेक्टिफाई करके, उसको सुधार कर हम आगे जा सकते हैं। वैसे भी कहा गया है, हम लोग लिटरेचर वाले, मैं साहित्य पढ़ा हुआ हूं, तो उसमें बोलते हैं एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, तो देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। तो हम भले अभी अनुभव करते हों कि हम किसी सुरंग से गुजर रहे हैं, बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है, मन काम नहीं कर रहा है, लेकिन उसके अंत में हमें प्रकाश अवश्य मिलेगा। तो ऐसी एक आशावादी नोट पर दीदी ने हम सबको आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एथिक्स के बारे में बात की। जो अंदर होगा वही बाहर प्रकट होगा, और मेरा सर्जन मेरे ही या तो विनाश का कारण बनेगा या उद्धार का कारण बनेगा। हम भस्मासुर बनते हैं या अमृत कलश निकालने वाले दूत बनते हैं, इसका आधार है। अब हमारे बीच में चीफ गेस्ट के रूप में उपस्थित हैं मिस्टर नीलेश एम देसाई सर। आपका एक छोटा सा अल्प परिचय, वैसे तो सिद्धियां बहुत हैं, आपने इतने काम किए हैं जिससे आप सबका और हमारा सबका सीना फूल कर चौड़ा हो सकता है। आप गोल्ड मेडलिस्ट बीई इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन अहमदाबाद की एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज से किए, 39 इयर्स आपने स्पेस एप्लीकेशन सिस्टम सेंटर और इसरो में गुजारे, लीडिंग माइक्रोवेव रेडार्स। अब देखिए आप जो नए नाम सुने हैं ना, आखिर में क्या सुना आपने, निसार और चंद्रयान, हाँ, ओशन सेट एंड रीसेट, इन सब के पीछे आपके प्रयत्न रहे हैं। पायोनियर इन एनएवी आईसी गगन सेटकॉम इमर्जिंग टेक एआईएमएल क्वांटम गगनयान। फिर रेसिपिएंट ऑफ, आप देखिए बहुत बड़ा उनको इनाम मिला हुआ है, इसरो एक्सेलेंस अवार्ड, एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, देश को कम से कम 20 ग्लोबल स्पेस फोरम्स में आपने रिप्रेजेंट किया है, और आईएसआरएस और आईएसजी के आप फेलो रहे हैं। कंटिन्यूइंग टू एक्सपांड इंडियाज स्पेस होराइजन्स, इंस्पायरिंग जनरेशन्स टू इनोवेट एंड रीच बियॉन्ड द स्काईज। आपके इनोवेशन्स ने इस देश को कितना अच्छा और जोरदार रक्षा कवच प्रदान किया है। देश आक्रामक नहीं है लेकिन रक्षा में तो मानता है, उसमें भी आपका योगदान रहा है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने विचार एथिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पेश करें।
धन्यवाद विनय पंड्या जी। ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन, राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन और स्पिरिचुअल एप्लीकेशंस रिसर्च सेंटर स्पार्क विंग का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए। मंच पर उपस्थित महानुभाव और यहाँ इसमें भाग ले रहे प्रतिभागी, आप सबका स्वागत करता हूँ और एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं मेरे विचार रखना चाहूंगा। ब्रह्मा कुमारी जी, राजयोगिनी उषा जी ने बहुत ही सरल भाषा में पूरे जो कॉन्टेक्स्ट है ये सेशन का बता दिया है उन्होंने, तो ज्यादा कुछ बोलने के लिए मेरे पास रहता नहीं है, बट मैं कोशिश करूंगा कि एथिक्स इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बारे में थोड़ा स्पेस को जोड़ते हुए, क्योंकि मैं स्पेस से जुड़ा हुआ हूँ, स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी से, तो किस तरह से हम उपयोग करते हैं। मेरे ख्याल से कल सारस्वत जी ने आपको AIML के बारे में फंडामेंटल्स एंड अदर रिलेटेड इश्यूज में तो बता ही दिया है, बट मैं उसको स्पेस की ओर ले जाते हुए किस तरह से स्पेस में उसका उपयोग शुरू हो चुका है और उसको आगे कैसे बढ़ाते हुए और उसमें एथिक्स का क्या रोल रहेगा, क्योंकि आपको सबको पता ही है, हम सबको, जिस तरह से इट इज टेकिंग शेप AI रिलेटेड एक्टिविटीज, तो इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज जिसको कहते हैं एवर विच हैज बीन फाउंड। सो इट इज वो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी रियली हमको डिसरप्ट न कर दे, क्योंकि कई और डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी तो होती ही है, बट उसका उपयोग मानव जात के कल्याण के लिए, लाभ के लिए हम करते हैं। बट यहां पे हमको ये देखना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से हमारे ऊपर हावी ना हो जाए, और जैसा कि उषा जी ने बताया कि किस तरह से कैलकुलेटर से आगे बढ़ते हुए कंप्यूटर, और फिर कंप्यूटर में भी एडवांस कंप्यूटर से बढ़ते हुए उसको, जब भी कैलकुलेटर आया था, कंप्यूटर आया, तो लोगों के मन में दहशत तो थी, एप्रिहेंशन, बट उसको पार करते हुए उसका उपयोग हमने किस तरह से किया। और खास करके कंप्यूटर के बारे में बताना चाहूंगा कि जब राजीव गांधी जी ने बैंक्स में कंप्यूटर लाने की बात की तो पूरे देश में उथल पाथल हो गई थी, सभी बैंकिंग कर्मचारी बहुत ही नाराज हो गए थे, सब स्ट्राइक पे चले गए थे, और सबको लगता था कि हमारी नौकरियां चली जाएगी और उसके कारण पूरा डिसरप्शन हो जाएगा देश में, और खास करके भारत जैसे लेबर इंटेंसिव कंट्री में जहां की जनसंख्या इतनी ज्यादा है तो उनको काम पे लगाने में मुश्किल होगी, और बैंकिंग सेक्टर एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण सेक्टर कहा जाता है। बट जैसा कि हमने देखा कि उससे कुछ भी ऐसा हुआ नहीं जिसकी दहशत थी, और उसको एक पॉजिटिव वे में, एफर्मेटिव वे में ही उसका उपयोग हुआ, और आज कंप्यूटर के बिना हम कल्पना ही नहीं कर सकते बैंकिंग सेक्टर की। और जो भी चेंजेस आ रहे हैं फाइनेंशियल सेक्टर में, और जिस तरह से गवर्नमेंट भी अभी कार्य कर रही है, तो आपको लगेगा कि कंप्यूटर इज अ एसेंशियल थिंग। सिमिलरली एआई आल्सो विल बिकम एन एसेंशियल थिंग। ऑफकोर्स उसके नेगेटिव पहलू कहीं अधिक दिख रहे हैं आज, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। और उसके पहले मैं जस्ट स्पेस के बारे में थोड़ा बता देना चाहूंगा। स्पेस आप सबको पता है कि रिक्तता, कि जैसे कि हम अनंत यात्रा पे जाते हैं तो स्पेस की ओर निकलते हैं, तो व्हाट इज स्पेस नेक्स्ट। तो ये जैसे कि हम यूनिवर्स, ब्रह्मांड और हमारी पृथ्वी, अलग अलग चीजें, डस्ट पार्टिकल्स, स्टार्स, प्लैनेट्स, ग्रह, उपग्रह, वो सब की बातें करते हैं तो हमको स्पेस की याद आती है कि किस तरह से एक रिक्तता है जहां पे सबके लिए जगह है, मीन्स जगह ही जगह है, इसलिए इसको स्पेस कहा जाता है। नेक्स्ट। तो ये सब इनिशियल चीजें, इसमें ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। और स्पेस के साथ हम जोड़ते हैं एटमॉस्फेयर, बीच में हमारे एटमॉस्फेयर है कि स्पेस की ओर जाने से पहले हम एटमॉस्फेयर की ओर से पसार होते हैं, और एटमॉस्फेयर के अपने अपने नियम हैं। और स्पेस रिसर्च में हम जो एक पहलू और एक जो टॉपिक जिसपे पिछली बार मैं जब यहां आया था तो उस पर चर्चा हुई थी, तो एक जस्ट आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहूंगा कि नासा के एडमिनिस्ट्रेटर चार्ल्स बोल्डन एक बार यहां आए थे हमारे सेंटर में। मैं अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यानी कि इसरो का जो एक सेंटर है, दूसरा सबसे बड़ा सेंटर अहमदाबाद में स्थित है, लोग इसरो को ज्यादा जानते हैं, सैक को कम जानते हैं। तो सैक एक सेंटर का नाम है इसरो के अंतर्गत, तो वो अहमदाबाद में स्थित है, और इसका महत्व इसलिए अधिक है कि विक्रम साराभाई जिन्होंने भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम की शुरुआत की थी, इज कंसिडर फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम, तो उन्होंने शुरुआत वो अहमदाबाद के थे, तो ऑब्वियसली अहमदाबाद से हुई थी पूरे हमारे भारतीय स्पेस प्रोग्राम की। तो यहाँ पे सेंटर स्थित है, तो ये सेंटर में जो हम एक्टिविटी करते हैं उसको आगे वहां पे आए थे चार्ल्स बोल्डन, उस समय नासा के एडमिनिस्ट्रेटर थे, और आपको पता है कि नासा स्पेस एक्सप्लोरेशन में बहुत ही आगे बढ़ गया है, और जो अन्य चीजें जिसमें स्पेस का उपयोग होता है उपग्रहों के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, नेविगेशन, रिमोट सेंसिंग, वो तो प्राइवेट सेक्टर में वहां पे काम चल रहा है, जो अभी भारत में शुरू होने जा रहा है। और नासा कॉन्सेंट्रेट कर रहा है प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन और सर्चिंग, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्टिविटी जिसको कहते हैं ईटीए एक्टिविटी, कि कहीं पे लाइफ है कि नहीं ब्रह्मांड में, और कहीं पे तो लाइफ को ढूंढना, पानी के बारे में ढूंढना, तो उस पे ज्यादा ध्यान दे रहा है नासा। तो मैंने उनको ये प्रश्न पूछा कि नासा इतना पैसा क्यों बर्बाद कर रहा है, टाइम, एफर्ट, मनी, एवरीथिंग, ये कहीं पे लाइफ ढूंढने के लिए। मुझे पर्सनली, मैं मानता हूं कि कहीं पे और जगह लाइफ है ही नहीं, पृथ्वी पे ही है खाली। तो उनका उत्तर था कि हम इसलिए ये सब प्रयोग कर रहे हैं और ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्टिविटी जो कहते हैं उसको, कि ये मानना बहुत ही मुश्किल है कि अगर पृथ्वी पे जीवन है, लाइफ है, तो कहीं और नहीं हो सकता। तो अगर पृथ्वी पे है तो कहीं और भी होने की संभावनाएं बहुत ही अधिक है, इसलिए हम उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं। और इसको पैराडॉक्स बोलते हैं, फर्मिस पैराडॉक्स, कि बाय प्रोबेबिलिटी, बाय स्टैटिस्टिक्स और कॉमन ह्यूमन लॉजिक से यही लगता है हमको कि अगर पृथ्वी पे लाइफ है तो कहीं ना कहीं और ब्रह्मांड में जीवन होना ही चाहिए, क्योंकि पृथ्वी को ऐसा विशेष ग्रह तो है नहीं कि यहाँ है वो जो और कहीं जगह नहीं हो सकता, कोई भी फॉर्म में होगा जरूर, बट अभी तक इसके कोई एविडेंस नहीं मिले। कई लोग क्लेम करते हैं मुझे ये दिखा, बट आज तक इसके कोई भी एविडेंस नहीं मिले हैं कि लाइफ कहीं एग्जिस्ट करती है। तो दैट इज कॉल्ड फर्मिस पैराडॉक्स। तो उस पर हम रिसर्च कर रहे हैं और उसमें मुझे पूरा भरोसा है कि AIML टेक्निक्स उसमें हमको काफी काम में आएगी कि किस तरह से, क्योंकि नेक्स्ट ये है उसका इक्वेशन कि कैसे लाइफ कहीं पे है कि नहीं वो फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी। तो उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स है, उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बट लास्ट के तीन जो पैरामीटर है उसके बारे में अभी भी पता नहीं है हमको कुछ भी। तो वो ढूंढने के लिए, और आप सबको पता हो गया कि AIML में एक टेक्निक होती है GAN, जनरलाइज एडवर्सियल नेटवर्क। तो उसमें आपके पास जनरली AIML जो टिका हुआ है होल चीजें की, कुछ हमारे पास डेटा है उसको यूज करके हम आगे के बारे में जानकारी लेके हम प्रेडिक्ट करेंगे और इस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि ये एल्गोरिदम चलता रहे, इटरेटिव जिसको। तो और जहां पे डेटा नहीं है वहां पे AIML आगे नहीं बढ़ पाएगा, बट ये केस में हमारे पास डेटा नहीं है और ऐसी कई चीजें हैं जिसमें हमारे पास पहले का डेटा नहीं है, तो किस तरह से हम आगे की जानकारी ले। तो उसके लिए जो ये GAN नेटवर्क जिसको बोलते हैं, ये टेक्निक अमल में लाई जाती है, इट इज वन ऑफ द टेक्निक्स ऑफ AIML। तो उसका उपयोग करके हम पता लगा सकते हैं कि डेटा खुद जनरेट कर सकते हैं जैसे सिमुलेशन में करते हैं, और उसका उपयोग करके हम आगे की जानकारी ले सकते हैं। तो अगर लाइफ हम ढूंढ रहे हैं ब्रह्मांड में कोई और जगह, तो उसके लिए मुझे पूरा भरोसा है कि AI टेक्निक्स हमको काफी काम में आएगी। तो उसका एक ये पॉजिटिव उपयोग जिसको मैं कह सकता हूं। नेक्स्ट, और कई कई रीजन है कि क्यों फर्मिस पैराडॉक्स में ऐसा क्यों लग रहा है कि इतने ये होने के बाद भी। तो एक इसमें अलग अलग फिलोसॉफीज है, उस पर डिटेल में नहीं जाएंगे। एक पोजिशन है कि हम इसलिए पता नहीं लग रहा है कि कहीं लाइफ है कि सभी लोग सुनने का प्रयास कर रहे हैं, एवरीबडी इज ट्राइंग टू रिसीव ओनली, कोई ट्रांसमिट करने का प्रयास नहीं कर रहा। कोई सिग्नल ट्रांसमिट करे तो दूसरा सामने वाला उसको पकड़ पाएगा ना। ऐसे हमने सब जगह बड़े बड़े टेलीस्कोप रिसीवर सब लगा के बैठे हैं, हाईली सेंसिटिव पूरे विश्व में, बट फिर भी कोई सिग्नल मिल नहीं रहे हैं बाहर से, अन्य ग्रहों से, अन्य सितारों से, अन्य गैलेक्सीज से। तो उसका रीजन ये हो सकता है कि कोई ट्रांसमिट ही नहीं कर रहा है। दूसरा यह है कि बहुत ही इंटेलिजेंट कम्युनिटी है जहां भी है, कि वो ये करना नहीं चाहती, या तो बहुत ही डम कम्युनिटी है जो कैसे सिग्नल भेजना वही जानकारी नहीं है उनके पास। और ह्यूमन टेंडेंसी है कि लाइफ विल ऑलवेज ट्राई टू डिस्ट्रॉय लाइफ, तो उस कारण से भी जो सामने वाले जो बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं वो सिग्नल भेजना नहीं चाहते कि उनको डर है कि उसके कारण उनका डिस्ट्रक्शन न हो जाए। तो इस तरह के अलग अलग पॉस्टुलेट्स है जिसमें मेरे ख्याल से AI बहुत ही लाभप्रद होगा। एक मैं जस्ट बताना चाहूंगा, प्राइम मिनिस्टर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडवाइजरी कमिटी में क्वांटम फ्रंटियर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये दो बहुत सारे नौ एरिया है उसमें ये दो को ज्यादा प्रोमिनेंस दिया गया है। उसके बाद EV व्हीकल्स और वो सब भी है, तो उसके बारे में हम इसरो में रिसर्च कर रहे हैं। वन इज क्वांटम फ्रंटियर्स एंड अनदर इज दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड बोथ ऑफ दिस आर गोइंग टू बी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट, तो 2022 का नोबल प्राइज फिजिक्स का ये तीन महानुभाव को मिला था, और जो कार्य उन्होंने 1997 में यानी कि 25 साल पहले किया था उसके बारे में उनका रिकॉग्निशन उनको मिला 25 साल बाद यानी कि 2022 में। और क्वांटम टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू बी अनदर डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, मैं इसका इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि ये जो आजकल साइबर फ्रॉड जो होते हैं, आपका ओटीपी चोरी हो जाता है, हैक हो जाता है, डिजिटल अरेस्ट, ये सब जो चीजें हम सुनते हैं, और कई आप लोगों को भी किसी को अनुभव हुए होंगे कि आपका पैसा कहीं गुम हो गया बैंक के अकाउंट से, तो ये सब पुरानी बातें हो जाएगी। नेक्स्ट, कि जो आपका ओटीपी है या पासवर्ड है, जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, वो क्वांटम चैनल थ्रू आएगी, यानी कि फोटॉन्स ऑफ लाइट के द्वारा, तो जिसको कोई चोरी नहीं कर पाएगा। इफ समबडी ट्राइज टू डू थेफ्ट, तो इमीडिएटली कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा। तो उसकी टेक्नोलॉजी के अलग अलग एक्सपेरिमेंट हमने स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में किए हैं और काफी अच्छे नतीजे मिले हैं, तो आगे इसको ले जाएंगे नेक्स्ट। और सैटेलाइट के माध्यम से पूरे देश में ट्रांसमिटिंग पासवर्ड्स और ये सब टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा, जिससे कि साइबर फ्रॉड विल बिकम थिंग्स ऑफ पास्ट। तो नेक्स्ट 10-15 साल में आप इसके बारे में ज्यादा सुनने वाले हैं, तो ये जिक्र करना चाहूंगा। अभी आते हैं मूल टॉपिक पे। एक जानने योग्य बात, 2024 का फिजिक्स और केमिस्ट्री नोबेल प्राइज, आपको जानकर आश्चर्य होगा, 2024 का फिजिक्स प्राइज जॉन हॉपफील्ड एंड जेफरी हिंटन, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो और कैलिफोर्निया से थे, उनको मिला है। जनरली फिजिक्स का नोबेल प्राइज हार्डकोर फिजिसिस्ट को मिलता है, उसी तरह केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज जो केमिस्ट्री में इन्वॉल्व है साइंटिस्ट उनको मिलता है, जो केमिस्ट्री का स्टडी करते। बट ये पांचों महानुभाव ऐसे हैं, दो केमिस्ट्री के, दो फिजिक्स के, चार लोग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लैंग्वेज एंड कंप्यूटर साइंस के निष्णात हैं। तो ये बहुत ही, जिसको कहते हैं कि बहुत ही अनोखी बात है, वेरी स्ट्राइकिंग फीचर इज दैट नोबेल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज इज गिवन टू पीपल हु आर इन्वॉल्व इन कंप्यूटर साइंस एंड दैट टू इन AIML टेक्निक्स। तो दैट मीन्स दैट AIML इज गोइंग टू बी ऑल परवेजिव, ये आपकी जिंदगी में जरूर से दाखिल होने वाली है और सब जगह इसका इम्प्लीकेशन होगा। ये नोबेल प्राइज कंप्यूटर साइंस को मिलने का ये इंडिकेशन ये है कि AIML हर एक फील्ड में हावी होने वाली है, एंड इट विल हैव डिसरप्टिव इफेक्ट्स एवरीवेयर, और कोई भी फील्ड हो, तो इसलिए भी उसके बारे में जानना और सोचना बहुत ही नेसेसरी हो गया हम सबके लिए। और इस वही पे एथिक्स की बात आएगी कि अगर इसको ठीक से उपयोग नहीं किया गया तो किस तरह से वो हमारे लिए बहुत ही एक सिरदर्द बनने वाली है। और इसके बारे में जानकारी दे दूं तो जॉन हॉपफील्ड जो ऊपर महानुभाव दिख रहे पहले, उसको फादर ऑफ AI कहा जाता है, उन्होंने AI की खोज की थी और गूगल में वो कार्य कर रहे थे, और अभी हाल ही में 3-4 महीने पहले उन्होंने वहां से रिजाइन कर दिया। और आपको पता होगा ओपनहाइमर जिसने एटम बम की खोज की थी और फिर बाद में हिरोशिमा नागासाकी के जो बॉम्ब गिराए गए उसके बाद ही बिकेम द बिगेस्ट ओपोनेंट ऑफ एटम बम। और सेम वे जॉन हॉपफील्ड जो AIML के पिता कहे जाते हैं, ही हैज बिकम द बिगेस्ट ओपोनेंट ऑफ AIML। तो इससे ही आपको पता लगना चाहिए कि AIML के जो नेगेटिव इफेक्ट्स जो हो सकते हैं अगर उसको ठीक से हैंडल नहीं किया तो क्या होने वाले, कि जो उसका उसको खोजने वाला जो उसका जनक है वही आज बोल रहा है कि AIML टेक्निक को जितना कम उपयोग करो उतना अच्छा है, और या एक समझपूर्वक उपयोग करो। तो जॉन हॉपफील्ड इज दैट पर्सन, इज लाइक ए ओपन हैमर ऑफ AIML। तो इससे ही आपको पता लगेगा। बट मैं जो बताना चाह रहा था कि केमिस्ट्री फिजिक्स में तो AIML हर एक तरह से अभी हावी हो चुका है, उसी तरह हर एक फील्ड में आप कोई भी फील्ड लो उसमें AIML टेक्निक का कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से उपयोग होगा ही, और अगर ठीक से उसको हैंडल नहीं किया तो उसके डिसरप्टिव इफेक्ट होने वाले। नेक्स्ट, ये किस तरह हम स्पेस में उसका उपयोग करते हैं, तो हमारे सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो पेलोड हम बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जो सैटेलाइट में उपयोग होता है, तो उसमें अलग अलग जगह पे ये टेक्निक्स का उपयोग करके हम उसका पॉजिटिव उपयोग जिसको कहते हैं, तो उसके जस्ट एक ग्लिम्स देना चाहता हूँ। अब यू कैन रन थ्रू एक बात। सो ये है AIML इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ये है रिमोट सेंसिंग में किस तरह से हम डेटा कलेक्ट करके भेजते हैं, तो अगर बादल है तो वो डेटा यूजलेस हो जाता है, तो वही पहले से ही जानकारी लेके वो डेटा भेजेंगे ही नहीं। और फिर है इवेंट मॉनिटरिंग, यानी कि जैसे लाइटनिंग हो रहा है तो खाली लाइटनिंग का इन्फॉर्मेशन ही भेजेंगे, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वही भेजेंगे। आज हम क्या करते हैं कि उपग्रह में जो भी डेटा कलेक्ट होता है वो पूरा सीधा डंप कर देते हैं ग्राउंड पे, और फिर ग्राउंड पे उसका प्रोसेसिंग करके खोजते हैं कि जो हमको कार्य करना है, उसके बदले ऊपर ही ये सब कार्य होगा और उसमें AIML टेक्निक्स बहुत ही पॉजिटिवली यूज हो जाएगी अलग अलग जगह। तो ये उसके सब अलग अलग एग्जाम्पल है जो मैं आपके लिए जस्ट देता हूं, और खास करके इमेज प्रोसेसिंग फील्ड में उसके बहुत ही उपयोग है कि हम किस तरह से अलग अलग इमेज रिजोल्यूशन इम्प्रूव करने के लिए, इमेज प्रोसेसिंग करने के लिए इस प्रकार की अलग अलग टेक्निक्स में उसका उपयोग करेंगे। तो अभी प्रेजेंटेशन नहीं देखेंगे हम, क्योंकि इस अलग अलग एग्जाम्पल मैंने दिया कि किस तरह से स्पेस में हम उसका पॉजिटिव वे में उपयोग कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल मैं दे रहा था कि किस तरह से हम उसको एक पॉजिटिव वे में अच्छे उपयोग के लिए AIML का ला सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड ऑफ स्पेस एप्लीकेशन या स्पेस रिलेटेड पेलोड डेवलपमेंट, सैटेलाइट डेवलपमेंट एंड उसका प्रोसेसिंग। अभी मैं आता हूं एक दूसरी बात पे। अभी बीच में मैं फ्रांस से वापस इंडिया आ रहा था तो एरोप्लेन में एक फिल्म देखी जो ये पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे थी, हॉलीवुड फिल्म थी। तो उसमें बताया गया था कि हाउ वन मेल पर्सन वॉज लुकिंग फॉर अ कंपेनियन। तो उसने कि अभी भविष्य में AIML टेक्निक्स के कारण ऐसी परिस्थिति उपयोग कि आपको कोई कंपेनियन चाहिए, फ्रेंड चाहिए, तो यू कैन ऑर्डर दैट फ्रेंड यूजिंग, सो दैट AIML कंपनी हु हैज डेवलप दिस टेक्निक ही विल गिव प्रोवाइड यू फ्रेंड। तो वो घर आके, जैसे आप रोबोट के बारे में तुमको पता ही है, तो रोबोट जैसा एक आदमी, बट वो इट विल बी लाइक ए ह्यूमन लाइक पर्सन। तो वो उसने अपने कंपेनियन मांगा तो कंपनी ने आके उसके लिए फीमेल कंपेनियन कॉन्फिगर करके दे दिया। उसके बाद जो पूरी स्टोरी डेवलप होती है कि उसमें बताया गया कि किस तरह से वो फीमेल कंपेनियन के साथ रहते रहते ही हैज बिकम सो अटैच्ड टू हिम, और उसको लगने लगा कि सामने एक ह्यूमन बीइंग ही है और उसमें भी इमोशन है, जबकि सी वॉज टोटली इमोशनलेस, उसमें कोई इमोशन थे बिकॉज इट वॉज मशीन ओनली, बट उसमें उस तरह से उसने इंटेलिजेंस और अन्य चीजें भर दी, इमोशंस ऑल्सो, कि बाद में धीरे 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 उसको उतना ऑब्सेशन हो गया कि जिसके कारण उसकी लाइफ बिकम हेल ऑफ थिंग, और फाइनली उसको कुछ बीच में मशीन में तो हमेशा खराबी आती रहती है तो उसको रीसेट करना पड़ा। तो उसके बाद उसको पूरा उसका उसने जो 6-8 महीने उसके साथ बिताए थे वो पूरा एज इफ डिसअपीयर हो गया। तो उसके कारण वो पर्सन में कितने इमोशनल चेंजेस हुए। सो दीज आर ऑल गोइंग टू बी द थिंग्स विच राइट नाउ आपको इमेजिनेशन लगते हैं बट इट मे बिकम रियलिटी। मोबाइल के बारे में किसने सोचा था कि मोबाइल आप उपयोग कर पाओगे, तो आज आ गया है मोबाइल आपके हाथ में। तो उसी तरह से ये टेक्निक भी आएगी। और दूसरा, हमने जो अनुभव किया है AIML टेक्निक्स का नेगेटिव यूज का, ये मैंने एक नेगेटिव यूज बताया तो उसका एक एग्जांपल दूंगा और फिर मेरी बात खत्म करूंगा। तो उसमें था कि हम इसरो में रिक्रूटमेंट के लिए एग्जाम लेते हैं, तो उसमें हमने देखा एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, नाम नहीं दूंगा मैं, तो वहां पे क्या हुआ कि एग्जाम देने कोई और आया। हम तो बहुत ही पूरा उसका विजिलेंस रखते हैं, फोटोग्राफ लेते हैं, बायोमेट्रिक्स करते हैं, एवरीथिंग, ऑल टेक्निक्स वर अवेलेबल विथ इसरो टू फाइंड आउट दैट ओनली राइट पर्सन अपीयर्स, और जो अपीयर हुआ वो ही बाद में अगर सिलेक्ट होता है रिटर्न एग्जाम में तो इंटरव्यू के लिए आता है, और ही इज द सेम पर्सन हुज अपीयर्ड इन इंटरव्यू रिटर्न एग्जाम एंड ही इज ओनली कमिंग फॉर इंटरव्यू, एंड फाइनली दैट पर्सन इफ सिलेक्टेड ही ओनली ज्वाइंस। बट इसमें हुआ ऐसे कि सामने वालों लोगों ने जो भी थे, जो इंपोस्टर्स जिसको कहते हैं, इम्पर्सोनेशन कैसे किया कि AIML टेक्निक यूज करके दो लोगों के फोटोग्राफ इस तरह से मर्ज किए कि एग्जाम देने कोई एक्स पर्सन आया, इंटरव्यू देने वाई पर्सन आया, हम डिटेक्ट नहीं कर पाए। सी दिस इज ए क्लासिक एग्जाम्पल हाउ AIML वॉज यूज इन अ वेरी डिसरप्टिव वे, और फाइनली सिलेक्ट हो गया और ज्वाइन होने कोई और आदमी आया। तो ये पूरा मीन्स डिस्पाइट ऑल दिस बायोमेट्रिक्स ऑल टेक्निक्स विच इसरो हैज, वो सब करने के बाद वी वर नॉट एबल टू डिटेक्ट। फाइनली नाउ टेक्निक्स हैव कम आउट विच सेम AIML टेक्निक्स नाउ वी आर गोइंग टू यूज टू डिटेक्ट दिस, और इजिली डिटेक्टेबल है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर फ्रॉड हो सकता है तो उसको डिटेक्ट करने का भी सेम टेक्निक विल बी यूटिलाइजिंग। और जैसा कि मैंने बताया, अगर डेटा नहीं है, प्रीवियस डेटा जो AIML की मेन रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके बावजूद भी वी कैन जनरेट द डेटा यूजिंग दिस GAN नेटवर्क को यूज करके, इस प्रकार से हम ये कार्य कर सकते हैं। तो ये है, मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन स्पिरिचुअलिटी एंड एथिक्स, बट जनरली हम कोई भी इंटेलिजेंट आदमी के साथ we will always say that ethics is at premium because the person is very intelligent, he must be very cunning also. That is the basic assumption. Because we have seen that simple people are more ethical in nature, generally. बहुत ही सरल लोग जो होते हैं और या ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो तो वो ज्यादा सरल होते हैं और उनके हैंडल करना बहुत ईजी रहता है. बट इंटेलिजेंट लोगों को हैंडल करना और डिफिकल्ट हो जाता है. और इसमें तो इंटेलिजेंट के ओवर एंड अबोव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले लोग अगर है तो किस तरह से मुश्किल होगा हमको उनके हैंडल करने का. तो ऑल दिस थिंग्स आर एसोसिएटेड fallouts of this artificial intelligence, but I am sure that the way we have handled computer and used it for betterment of humankind, usi tarah se ethics ko yaad karte hue, ethics ka pe zyada zor dete hue aur Brahma Kumari jaise organization usme active hai, to mujhe pura bharosa hai ki AI will also be used in a very disruptive way but very useful way for the benefit of the human mankind. Thank you for giving me this opportunity.
मनुष्य की क्यूरियोसिटी उसे कहां तक ले जाती है, इसका कितना अद्भुत उदाहरण था ये. उपनिषद में एक वाक्य आता है, विद्याम च अविद्याम च यह तद वेद उभयम सह. फिर बोलते हैं, अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया अमृतम अश्नुते. मेरी क्यूरियोसिटी मुझे बहुत कुछ जानने के पीछे भगाती है, भागते रहते हैं हम लोग. ये है अविद्या जो इस लोक में हमें काम लगती है. हमारे देह को चलाने के लिए कुछ तो सीखना है, वो अविद्या में आता है. और विद्या क्या है, जो आत्मविद्या है. तो दोनों को अगर साथ में लेके चलेंगे, ट्रेन के दोनों पहिए बराबर के होंगे, तभी गाड़ी सीधे रास्ते जाएगी. एक टेढ़ा हो गया तो भाई ने बताया कि भलता ही आदमी कहां आ गया, आर्मी में घुस गया. तो ये गलत उपयोग भी हो सकता है. तो इसका हमारे सामने उदाहरण भी मिला और उसका तोड़ भी उसी में से, जैसे कांटे से कांटा निकालते हैं. और हम इन्फॉर्मेशन के पीछे अगर भागते हैं तो हमारे पीएचडी जो स्कॉलर्स हैं सब, उनको रेफरेंस मटेरियल यानी रिलेटेड स्टडीज, उसके लिटरेचर की स्टडी करनी होती है. एआई ने वो मिनटों में पूरी करने का काम कर दिया, लेकिन अब हम उसमें से ही कट एंड पेस्ट करके हमारी पीएचडी हासिल करें तो इसमें एआई जवाबदार नहीं है, हम खुद उसके लिए जवाबदार हैं. तो लिटरेचर स्टडी बहुत सरल हो गया, नहीं तो बहुत सालों लग जाते थे किताबें पढ़ पढ़ के. जो तीन काम तीन साल में होना था, दस दस साल तक लोगों का पूरा नहीं होता था, वो समय पर पूरा हो गया. लेकिन उसका एथिकल उपयोग अगर करेंगे तो इस तरीके से. अब मैं निमंत्रण देना चाहूंगा हमारे इस सत्र के चेयरपर्सन श्री अर्थबंधु साहू जी को. आप डायरेक्टर ICAR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी हैं. 30 साल से आपने एनिमल न्यूट्रिशन काम किया, 500 प्लस पब्लिकेशंस हैं, उसमें 220 से ज्यादा पीयर रिव्यूड पेपर्स हैं, 10 बुक्स हैं उनके नाम. एक्सपर्ट इन रुमिनेंट न्यूट्रिशन, रुमेन इकोलॉजी, फीडिंग सिस्टम्स एंड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन एनवायरमेंट इंटरेक्शंस. एच इंडेक्स उसमें 34, I10 इंडेक्स 110 और 4500 सिटेशंस आपको मिले हुए हैं. अवॉर्डेड नेशनली एंड इंटरनेशनली फॉर रिसर्च लीडरशिप एंड लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशंस. एक्टिव मेंबर ऑफ मल्टीपल प्रोफेशनल वेटरिनरी एंड एनिमल न्यूट्रिशन सोसाइटीज. स्पेस से हम कहां आ गए, सीधे जमीन पर आ गए. और जमीन में भी हम हमारे आसपास के वातावरण में बसने वाले प्राणियों के साथ जीने की बात आ गई. ए विजनरी साइंटिस्ट एडवांसिंग एनिमल न्यूट्रिशन विथ ग्लोबल इम्पैक्ट एंड अनवेवरिंग डेडिकेशन टू रिसर्च एक्सेलेंस. मुझे लगता है जो डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए ना बोल रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, उसके पीछे आपका पीठबल होगा, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट और दुनिया के जो इम्पैक्ट है उसको दूर करने के लिए. आइए आप अपने विचार रखिए.
धन्यवाद महानुभव. सम्मानित मंच, मेरे सभी भाई और बहनें, मैं पहले धन्यवाद देना चाहूंगा अंबिका दीदी और हमारे नलिनी दीदी का, जो हमें बेंगलोर से यहीं तक बुलाए हैं. जैसे कि सर ने अभी बताया कि मैं एक इंस्टीट्यूट का निर्देशक हूं, जिस इंस्टीट्यूट में तीन मेन ऑब्जेक्टिव्स है, एक एनिमल न्यूट्रिशन जो पशु पोषण पोषण के बारे में, एक एनिमल फिजियोलॉजी जो हमारा फिजियोलॉजिकल स्टेजेस है, और एक बायो एनर्जेटिक्स एंड एनवायरमेंटल साइंस जो हम एनवायरमेंट। तो हमें इस इंस्टीट्यूट्स का जो ऑब्जेक्टिव्स को हमारे ह्यूमन लाइफ के साथ जोड़ें, तो जो टॉपिक रखा गया है स्पिरिचुअलिटी फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। जिस सब्जेक्ट में हमें स्पिरिचुअलिटी को क्यों लाना चाहते हैं फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो उसका मैं मेरे कुछ स्लाइड्स के द्वारा एनिमल साइंस रिलेटेड रिसर्च के ऊपर कुछ आपके सामने रखूंगा। लेकिन जो मैं शुरुआत किया था कि फिजियोलॉजिकल स्टेजेस से मैं आपको थोड़ा सा अवगत कराना चाहूंगा कि हमारा जो लाइफ को हमें ऐसे चार स्टेजेस कहते हैं, लेकिन तीन स्टेज पे हम डिवाइड करें। एक है हमारा जो यंग, जो हमारा हम यूथ है, जो देन अडल्ट, देन ओल्ड, तीन स्टेज पे हम डिवाइड करें। ड्यूरिंग यंग हम वी गैदर नॉलेज, ड्यूरिंग अडल्ट वी अप्लाई दैट नॉलेज फॉर वर्क एक्सपीरियंस, एंड अडल्ट इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ योर नॉलेज एंड वर्क एक्सपीरियंस, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज दैट इज द फाइनल वन, दैट इज द ओल्ड एज मीन्स ओल्ड। सो इन ह्यूमन लाइफ सपोज हम इसी हिसाब से हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखें, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन हम ओल्ड को सोल्ड कर दें, इट मीन्स हमें ओल्ड जो हमें कह रहे हैं, इट मीन्स हमारे जो पेरेंट्स हमें जो कह रहे हैं, हमारे जो बुजुर्ग हमें जो कह रहे हैं, वो अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस को लेके हमें उपदेश दे रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि आप ये करो, ये ना करो, ये अच्छा है, ये इस रास्ते में जाओगे, तो ये उनके एक्सपीरियंस को लेके कह रहे हैं। और दैट इज एआई। और वो कैसे एक्सपीरियंस नॉलेज कैसे गेन किए, कैसे एक्सपीरियंस लिए, इट इज देयर लाइफ स्टेजेस। तो उस हिसाब से उनका नॉलेज हम कैसे लेते हैं वो हमारे ऊपर है। सपोज हम उसको एक पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ लिए कि दीज आर दी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ स्टेजेस, दीज आर दी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स वेयर ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज देयर, वहीं पर स्पिरिचुअलिटी आता है। तो हम जब इसमें सब्जेक्ट में लिखे हैं कि एथिक्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एथिक्स क्या है, ये हमारा मोरालिटी है, हम कैसे समझते हैं, हमारा मोरल क्या है, इस लाइन पे मैं कुछ एग्जाम्पल सबको महाभारत से देना चाहूंगा कि महाभारत में हमें जो कुछ पर्सन्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पर्सन्स हैं, हम उनको एक एआई कंप्यूटर के हिसाब से देखें या एक मशीन रोबोट के हिसाब से देखें। पहले एक रोबोट के हिसाब से हम देखें तो भीष्म पितामह, भीष्म पितामह ही इज मीन्स यू कैन प्रोग्राम्ड प्रोटेक्ट द थ्रोन। उसके अलावा उनका और कोई सोच नहीं था कि वी विल प्रोटेक्ट द थ्रोन, नॉट प्रोटेक्ट द ह्यूमन काइंड, नॉट प्रोटेक्ट द अर्थ, नॉट प्रोटेक्ट द ग्लोब। फिर हम नेक्स्ट स्टेज आए जिसमें आप देखेंगे इवन श्री कृष्ण जी भी इनको काफी प्रशंसा किए थे, कर्ण। कर्ण के पास सब कुछ था जो श्री कृष्ण जी जैसे लाइफ स्टेजेस था, वो जन्म किसी जगह पे हुए, पाले दूसरे के द्वारा, नॉलेज लेने में उनको काफी कठिनाई आई और उनका नॉलेज को प्रूव करने के लिए भी काफी कठिनाई आई। लेकिन वो जिस ऑब्जेक्टिव के साथ गए, डेडिकेटेड टू दुर्योधन, सो दैट इज वही एक कंप्यूटर है जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस गलत हो गया। हम उसी हिसाब से और एक महानुभव के पास आए जो एक रियली कंप्यूटर है, दैट इज आप कहेंगे जो एकलव्य। एकलव्य के पास सामने कोई थे नहीं नॉलेज देने वाले, बट एकलव्य ही एक्वायर्ड नॉलेज। तो ये जो हम अभी दीदी कह रही थी कि हम मन से सोचें ये हो जाए, पुष्प विमान हो जाए, एकलव्य ऐसे ही मन की सोच है, वो उनके सामने नॉलेज थे, नॉलेज के जो एनवायरमेंट थे उस एनवायरमेंट से ही अपने को एक्वायर किए। लेकिन उस जो थ्रेड था वो थ्रेड एप्लीकेशंस के ऊपर था, इसलिए उनका अंगूठा काट दी गई एंड वो लास्ट में इवन पैर के साथ भी लड़ाई किए, लेकिन उनका एग्जिस्टेंस भी। लेकिन ये सभी को लेके आप सब अर्जुन का कैरेक्टर को जाएंगे, अर्जुन ह्यूमन एग्जिस्टेंस के साथ जुड़े रहे, स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़े रहे, इसलिए जो स्पिरिचुअलिटी इन ह्यूमन एग्जिस्टेंस, हमें अर्जुन को हम उसी हिसाब से एक रोबोट के हिसाब से देखें, तो दिस इज एक्चुअली हाउ वी अप्लाई आवर एथिक्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इस सभी का जो स्टोरी है, महाभारत आप सभी सुने होंगे, जाने होंगे, महाभारत को कौन देख रहा था? भीमसेन की बेटा बलारसेन, बलारसेन का एक मस्तिष्क रखा गया था, यू कैन से कंप्यूटर रखा गया था, जो विजुअलाइज करता था व्हाट इज द वॉर। तो फाइनली उनको जब पूछा गया व्हाट इज द वॉर, उनका क्या आंसर था? वन एक ही आंसर था, आप लोग सुने होंगे कि हाँ ये सब जो है एक सुदर्शन चक्र आया और सभी को खत्म करते गया, नोबडी इज द विनर, इट इज द सुदर्शन चक्र। हम सुदर्शन चक्र को सपोज व्याख्या करें, ये विन ऑफ गुड्स ओवर इविल्स, सुदर्शन चक्र एक गुड्स जो भलाई है, भलाई बुराई के ऊपर विन की है। हम इसी लाइन पे हमारे लाइफ स्टेजेस को सोचें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सोचें, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी बुरा नहीं है। अभी हमारे स्पेस साइंस के लिए जो साथ ने अभी बताए, विदाउट हमें ये सब कैलकुलेशंस नहीं होंगे तो हम स्पेस नहीं छोड़ सकते। यू हैव टू गो फॉर 1/1000th of a second, अदरवाइज आपका जो रॉकेट है वो कहाँ पहुंच जाएगा, आपका महाकाश कहाँ पहुंच जाएगा विद 1/1000th of a second पे, जस्ट 1000 miles आउट। तो ये इस स्पिरिचुअलिटी को लेके मैं थोड़ा सा मेरा जो इंस्टीट्यूट्स के बारे में बताना चाहूंगा, एनिमल साइंस के बारे में बताना चाहूंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यहीं पे कैसे काम करता है। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको जस्ट एनिमल साइंस के बारे में बताऊंगा। ये एक पॉपुलेशन स्ट्रक्चर मैं आपके सामने रखा हूं, जिस पॉपुलेशन स्ट्रक्चर में डिफरेंट पॉपुलेशन हमारा है। हम सपोज डोमेस्टिकेशन पे चले जाएंगे, अर्लीस्ट डोमेस्टिकेशन, हम एनिमल्स को क्यों पाले? डेफिनेटली हमारे अच्छाई के लिए पाले, लेकिन ग्रेजुअली हमारा इस अच्छाई के साथ, हमारा अच्छाई के लिए जो पाले, एनिमल के अच्छाई के साथ हमें जो वेलफेयर है वो वेलफेयर एंगल आया। जब हम वेलफेयर एंगल को भूल जाएंगे तो एनिमल विल बी ए मशीन, एनिमल मशीन हो जाएगा, हम मशीन से भी जो चाहेंगे वही, जैसे बटन दबाए दूध आया इसी टाइप का हो जाएगा। तो ये हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसमें हम मशीन, आप मशीन मिल्किंग का बात करें, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का बात करें, या जो एम्ब्रियो ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी का बात करें, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का बात करें, ये सब टेक्नोलॉजी है जो AI आधारित है। हमें ये सभी टेक्नोलॉजी को सपोज एक मशीन के रूप में ले आएंगे, फाइनली हमें एक एनिमल बच्चा मिल जाएगा, ये एक रियलिटी हो सकती है, लेकिन इसके अंदर एथिक्स नहीं होंगे। उसका जस्ट मैं कुछ व्याख्या आपके सामने रखना चाहूंगा, जो हम प्रेडिक्ट कैसे करते हैं, एनिमल, ये एनिमल आगे जाके अच्छा दूध देगा, ये एनिमल आगे जाके अच्छा हमारे लिए कमाई करेगा, हम प्रेडिक्ट करते हैं इसका ब्रीडिंग स्ट्रक्चर से, कैसा एनिमल है, किस रीजन से है। जैसे हम, आप लोग जानते होंगे कि हम बाहर से जर्सी हल्सिन ले आए हैं बाहर कंट्रीज से, और यहीं पे हमें उसको माइक्रो एनवायरमेंट क्रिएट करके पाल रहे हैं। अभी पोल्ट्री का बात करें, उसके लिए एक माइक्रो एनवायरमेंट क्रिएट किया गया है, लेकिन जो हमारे नेटिव्स हैं, जो देसी गाय हैं, इसलिए देसी गाय का दूध, अभी सामने बता रहे थे कि आप दूध के बारे में डेफिनेटली कुछ बात करेंगे, तो ये दूध के बारे में आपको बात करना, एक एग्जाम्पल देता हूं। मैं इससे पहले कैमल इंस्टीट्यूट में था, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल, वहां पर डायरेक्टर था। मैं एक एग्जाम्पल साथ आपको देता हूं, तो कैमल का जो मिल्क लेट डाउन है, कैमल की फ्रेंडलीनेस के ऊपर डिपेंडेंट है, ये हम प्रूव किए हैं, पब्लिश की भी किए हैं। फ्रेंडलीनेस का मतलब क्या है? वो फ्रेंडलीनेस कैसे पैदा होगा? जब हमारा ह्यूमन एनिमल इंटरेक्शंस बढ़ेगा। हम सपोज ह्यूमन एनिमल इंटरेक्शंस को मशीन इंटरेक्शंस कर दें, एनिमल इज ए मशीन, तो ह्यूमन उसके पास गया नहीं, देन वो मिल्क लेट डाउन भी कम हो जाएगा। ये एक प्रूवन है, प्रूवन फैक्ट है, हम कैमल में देखें तो कैमल में मशीन मिल्किंग हो रहा है, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि मशीन मिल्किंग ना करें, लेकिन ये एक एथिक्स है, जो एथिक्स के साथ हम एक वेलफेयर के साथ भी जुड़े हैं। एनिमल का वेलफेयर एंगल हम देखेंगे तब जाके हम एनिमल का या हमारा पूरा जो ग्लोब का, क्योंकि ह्यूमन एग्जिस्टेंस ओनली ह्यूमन एग्जिस्टेंस नहीं होगा, ह्यूमन के साथ एनिमल्स भी होंगे, इंसेक्ट्स भी होंगे, हमारे फॉरेस्ट भी होंगे, सब होंगे। तो उस हिसाब से हम एक विजन 20047 जैसे सर अभी कह रहे थे, डेफिनेटली विल बी मोर एंड मोर डिपेंडेंट ऑन एआई। नेचुरली वी हैव टू बी मोर एंड मोर डिपेंडेंट ऑन एआई। हम जो फोरकास्ट करते हैं, मैं फोरकास्ट का एक एग्जांपल देता हूं। जैसे एक डिजीज अकरेंस है, अभी कोविड का हुआ, आप लोग जानते हैं कितना इमीडिएटली हम वैक्सीन प्रोड्यूस किए। इस टाइप का एनिमल में एक लंपी स्किन डिजीज हुआ था। अभी बहुत सारे डिजीजेस हैं, तो वो डिजीज का हम फोरकास्ट कैसे करेंगे? फोरकास्ट हम डिफरेंट रीजन पे, इस रीजन कोस्टल रीजन है, हाई ह्यूमिडिटी रीजन है, इस रीजन एरिड रीजन है, लो ह्यूमिडिटी रीजन है, हाई टेम्परेचर है, वो हाई एटीट्यूड रीजन है, ऐसे डिफरेंट 11 ज्योग्राफिकल रीजन है हमारे इंडिया में। वर्ल्ड का बात करें तो बहुत सारे हैं, टेम्परेट क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, कोस्टल क्लाइमेट, लाइक दैट। हम इसको क्लाइमेटिक जोन्स ले लें, ज्योग्राफिकल जोन्स ले लें, इंडिया को ले तो 11 ज्योग्राफिकल जोन्स है। अभी 11 ज्योग्राफिकल जोन्स पे जो लास्ट 20 इयर्स 30 इयर्स से जो डाटा है हमारे पास, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, डिजीज अकरेंस, देन नॉट ओनली वन डिजीज, यू कैन टारगेट वन डिजीज, एक डिजीज का दूसरे डिजीज के साथ क्या इंटरेक्शन है, ये डाटा को हम अपने दिमाग से एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। एनालिसिस कौन करेगा? एआई करेगा। एआई एनालिसिस करके फोरकास्ट कर सकता है कि अगले महीने या अगले दो महीने, अगले छह महीने, अगले साल क्या डिजीज आ सकता है, कोविड लाइक डिजीज आ सकता है क्या, ये प्रेडिक्ट हम कर सकते हैं, तो फिर हम तैयारी पे आ सकते हैं। दिस इज पॉजिटिव एप्लीकेशन। लेकिन ये डाटा जो हम कलेक्ट कर रहे हैं, सपोज ये डाटा में गलतियां हैं, तो आपका सब प्रेडिक्शन गलत हो जाएगा और आपका मैक्सिमम जो ट्रायल है वो ट्रायल फ्रूटलेस हो जाएगा। तो ये नेगेटिव साइड से। तो उस हिसाब से हम जब एथिक्स का बात करें, तो एथिक्स तभी आता है, मोरालिटी। अभी इसी में एक और एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, राम और रावण, रामायण से। राम रा राम हम नॉलेज को ले, राम रा म मन या मोरालिटी। तो नॉलेज को मोरालिटी के साथ जोड़ के मर्यादा पुरुषोत्तम है श्रीराम, और रा नॉलेज के साथ पूरा भरा भरा है, लेकिन वन रावण, वन मीन्स जंगल, मीन्स इसकी जो एप्लीकेशन से बुद्धि है, जो मोरालिटी है, दैट इज ए जंगल नेचर, इट इज दैट इज नो डायरेक्शन, डायरेक्शनलेस। तो रावण बना, तो राम फिर रावण को वध किए। तो ये इसी टाइप का हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इसी लाइन पे देख सकते हैं, जो एथिक्स है। तो स्पिरिचुअलिटी इन ह्यूमन एग्जिस्टेंस ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट को हम छोटे शब्द पे हम प्रकाश नहीं डाल सकते हैं। और इसी हिसाब से फाइनली जो मैं ये स्लाइड्स नेक्स्ट चले जाइए, लास्ट स्लाइड्स, ये जो पॉलिसी एरिया है, दिस इज इम्पोर्टेंट। हम जब पॉलिसी ऐसे बनाएं कि इसमें हमें वेलफेयर एंगल पर ध्यान दें और मोरालिटी को ध्यान में रखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सही तरीके से अप्लाई करें, जिससे ह्यूमन काइंड के लिए ये वरदान हो और ये नॉलेज के साथ मन जुड़ा रहे, मोरालिटी जुड़ा रहे, बन ना बन जाए। धन्यवाद।
हिंदी में एक शब्द आता है रव, रव मने आवाज। तो जो बहुत आवाज करता है ना, वो रावण होता है। अंदर से खाली होंगे तो फिर आवाज होगी। रावण मने खालीपना अंदर से। तो भाई साहब ने हमारे पर्सपेक्टिव्स के साथ एथिकल और एनिमल वर्ल्ड के साथ हमारा थोड़ा सा जो परिचय कराया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस मामले में दो तीन शब्द मेरे मन में आते हैं। एक जमाना था, किसी ने फिलोसोफर किंग की कल्पना की थी। अब आज जो किंग्स हैं कैसे हैं हम जानते हैं, इसलिए एआई कहां जा सकता है इसका भी हमें अंदाज है। मैं दुनिया के पर्सपेक्टिव में बोलता हूं, है ना, नेशनल पर्सपेक्टिव हमारे लिए छोटा है, लेकिन पूरी दुनिया के बारे में भी सोचें तो ये जो हम स्ट्रगल्स देख रहे हैं क्या है। दूसरा है, हम लोग पुराने जमाने में हमारे वैज्ञानिक कौन होते थे मालूम है? उन्हें हम ऋषि कहते थे। तो विज्ञान और ऋषित्व दोनों का कॉम्बिनेशन अगर हमारे बीच में होगा तो बहुत काम होगा। और हम यहां जब ज्ञान लेने आते हैं ना, तो हमारी बहनें हमको बहुत प्यार से बोलती हैं, आप एक अच्छे रास्ते पे आए हैं, अंदर की पवित्रता आपकी जितनी बढ़ती जाएगी आपकी वाणी अमोघ होती जाएगी, आप जो बोलोगे आप जो सोचोगे वो होगा। अब आप सोचिए हम क्या क्या सोचते हैं और अगर वो होगा तो क्या होगा। तो सेल्फ और उसके साथ साथ जुड़े हुए सभी टेक्नोलॉजीज को हमें ध्यान में रखना है और ऐसा ही सोच चलाना है जो होना चाहिए, जिसे हम खुले दिल से सबके सामने व्यक्त कर सके। अब अंतर जगत की यात्रा के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं, हम अपने भीतर में हम क्या कर सकते हैं अपने आप के लिए, उसके लिए हमारी बहन आई है, पीएचडी अप्लाइड मैथमेटिक्स, फॉर्मर लेक्चरर इन माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। आप सोचिए एक वैज्ञानिक की दृष्टि से आपने जीवन की शुरुआत की। हेमलता बहन डेडिकेटेड टू ब्रह्मा कुमारी सिंस 1996, लीड्स प्रोग्राम्स इन एंगर मैनेजमेंट, वैल्यू एजुकेशन, लीडरशिप ट्रेनिंग, अनेक कॉन्फ्रेंसेस और ट्रेनिंग्स अपने आयोजित की हैं। राजयोग मेडिटेशन और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के साथ वो जुड़ी हुई हैं और आपका एक यूनिक कंट्रीब्यूशन टू दिस कंट्री एंड टू दिस नॉलेज दोनों के लिए है, वो है स्पिरिचुअल साइंस एग्जीबिशन, जिसे साइंस कांग्रेस हर बार अब निमंत्रित करके उनको बुलाती है, क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी, साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों का कहां कहां पैरेलल पाथ है वो हमें बताती रहती हैं। और ट्रेंड इन सेल्फ मैनेजिंग लिमिट लीडरशिप, बिजनेस लीडरशिप, लिविंग वैल्यूज एंड सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। और आखिरी वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है, ब्लेंडिंग साइंस विथ स्पिरिचुअलिटी, शी कंटिन्यूज टू नर्चर माइंड्स विथ नॉलेज एंड हार्ट्स विथ विजडम। आपसे एक क्षमा याचना के साथ मैं चाहूंगा कि आप 10 मिनट और हमारे लिए अपने डेडिकेट करें, जिससे ये सेशन के बाद में हम ओवरशूट तो हो रहा है लेकिन फिर भी आपके क्षमा याचना के साथ ये मुझे लगता है आप सब दे रहे हैं ना 10 मिनट हमें। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। प्लीज
ओम शांति टू ऑल ऑफ यू हियरिंग सो फार। अभी आप रोज एक नेम बोर्ड में एक पिक्चर देख रहे हो, टू हेड्स ब्लैक एंड व्हाइट। आपने सोचा कुछ इसके बारे में? दिस इज द सीक्रेट ऑफ राजयोग मेडिटेशन। एक्चुअली राजयोग द बेनिफिट ऑफ राजयोग मेडिटेशन ये है कि अच्छी तरफ से हम बैलेंस रख सकते हैं दिल और दिमाग के बीच में। यही अभी प्रॉब्लम है। हमारा इसरो साइंटिस्ट ने बोला कि इंटेलिजेंस पीपल को हैंडल करना मुश्किल है, हम तो देख रहे हैं डेली लाइफ में। और इसमें अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखिए क्या है रिजल्ट। सो इंटेलिजेंस इट्सेल्फ डिफिकल्ट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भी मुश्किलात लेते हैं, इसीलिए हम राजयोग सीखना अभी बहुत जरूरी है अभी के जमाने में। आप तो बहुत लकी हो, ब्रह्म कुमारी सी इंस्टीट्यूशन में आए हो और राजयोग सीख के जाएंगे और अपना दिल और दिमाग के बीच में बैलेंस भी रख सकते हैं। इससे बहुत समस्या के लिए समाधान मिल जाएगी अपने आप। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है, हर एक सेशन के बाद जो मेडिटेशन कमेंट्री दिया गया है उसके ऊपर दिमाग नहीं चलाना। ये ऐसा है मेडिटेशन हम दिल से करना है। ये कमेंट्री, ये क्यों, ये शब्द क्यों बोला गया, ऐसा सोचना मत। प्लेनली विजुअलाइज करिए, The secret of concentration in Rajyoga meditation is nothing but visualizing the thing. आप जो सुनते जा रहे हो उसके लिए थोड़ा स्पेस दीजिए मन में और उसको अच्छी तरह से विजुअलाइज करिए. और एनालाइज करते ही समय विजुअलाइज करना बहुत मुश्किल है, ये कॉन्ट्रास्ट फैक्टर है. इसलिए अभी कॉमेंट्री ऐसे ही दिल से फॉलो करके अनुभव करना, इससे आपका मन बहुत लाइटनेस फील होता है और इससे हम प्रोफेशनल लाइफ और फैमिली लाइफ के बीच में बैलेंस भी ला सकते हैं. चलिए, योग की यात्रा पर. मैं यहां बैठी हूं, योग का अभ्यास करने के लिए. शरीर को रिलैक्स मूड में रखिए, नो डिस्कम्फर्ट इन द बॉडी जॉइंट्स, कमर बैकबोन सब सीधा रखिए, बैकबोन स्ट्राइट, नेक स्ट्राइट, आईज स्ट्राइट. Take a deep breath. Along with that breath, leave all the worries and heaviness. I am okay. My body is comfortable. Focusing my mind on the forehead, I started my visualization, seeing myself like a point of light, एक बिंदु के रूप में अपने को देख रही हूं. मेरी कॉन्शियसनेस को स्थूल शरीर से निकाल के एक प्रकाश की बिंदु में रख रही हूं. हां, आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट. मैं एक प्रकाश रूप हूं. ब्रकुटी के बीच में मेरा ध्यान जा रहा है. इतना बड़ा शरीर को एक एनर्जी के रूप में आत्मा में संभाल रही हूं. मेरा पूरा अवेयरनेस शरीर में फैला हुआ है. Head to feet. I am having my awareness on the body. अभी धीरे धीरे मेरी प्रकाश की किरणें मस्तक से पूरे शरीर पर फैला रही हूं. एक्सपीरियंसिंग द फीलिंग्स ऑफ लाइट स्प्रेडिंग थ्रू आउट द बॉडी. Each and every cell is receiving the light. Pura sharir gum hota ja raha hai.
मेरा सूक्ष्म आकार लाइट के कार्ब में है, ब्राइट सटल बॉडी. आई एम सीइंग क्लियरली इन द स्क्रीन ऑफ माय माइंड. Focusing my thought on myself, just a point of light, I am the light. The light full of values, good vibrations, exploring my innate values from myself, purity, peace, power, love, knowledge, happiness and bliss. I am the embodiment of all these values. It's my original property. It's my own qualities. I am taking my mind in silence, deep silence. As a bindu, I am flying in the space, akash tattva mein, main bindu banke उड़ रही हूँ विद फुल फ्रीडम. आई एम फुल्ली फ्री फ्रॉम ऑल माय बर्डन्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फीलिंग लाइक अ चाइल्ड, हैप्पीली फ्लाइंग. इस शब्द की दुनिया से दूर जा रही हूं, उड़ते उड़ते सुप्रीम अबोर्ड तक. प्रकाश के रूप से खुद को लेके जा रही हूं. Entering in the silence abode, the deep silence I am sensing. The highly energetic field, thake huye man aur buddhi ko, is supreme abode mein रह के चार्जिंग कर रही हूँ. आई एम चार्जिंग माई सेल्फ विद सुप्रीम पावर. एक शक्ति के रूप से सुप्रीम पावर मेरे अंदर छा रहे. I am lucky enough to get this power. I am just a light. In deep silence, this is my originality. This is what am I. I relax myself. Relax. Gradually coming back to this physical world. Sharir ke mastak par aakar अपने स्थान पर बैठ गई हूं, एक बिंदु बन के. ओम शांति शांति शांति.
दीदी का धन्यवाद अंतर यात्रा कराने के लिए. और लंबी सेशन के बाद थोड़ा सा रिलैक्स फील किया हमने, अपने आप को भी महसूस किया. अब मैं हमारी बहनों से निवेदन करूंगा कि मंचस्थ महानुभावों को